21वां सर्ग गबन का प्रस्तुत है आपके सामने। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंता अग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष की सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष ही से हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है, लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी, सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। कुल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण भी का भी विलंब न करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपये अदा कर सकता है, उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मन में यह निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी न थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूंगा मांग लूंगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज उठा ले जाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था, उसी उपाय से क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जबान से तो शायद वह कभी विपत्ति का हाल न कह सकेगा, इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही न मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख न खुल जाए, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और कोई स्थान ही न रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि यह भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जालपा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के छीन प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसकी स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। हाँ, इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूँ, उसी के साथ यह कपट, जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। आह, जिस समय से ज्ञात होगा इसके गहने फिर चोरी हो गए, इसकी क्या दशा होगी? पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी, वह किन आँखों से उसका यह क्लेश देखेगा? उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुँचाया है, किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वह रत्नों से लद जाती, दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहाँ कोई सुख नहीं, उल्टे और रोना पड़ा। रमा फिर चारपाई पर लेट रहा, उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गई। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं बड़ा अच्छा सपना देख रही थी, बड़ा बाग है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं, इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो और एक साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है, बिल्कुल देवताओं का सा उसका रूप है। वह मुझसे कहता है, बेटी मैं तुझे वर देने आया हूँ, मांग। क्या मांगती है? मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछूं क्या मांगूं, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते। मैं सारा बाग छान आई, पेड़ों पर झांक कर देखा, तुम न जाने कहाँ चले गए हो। बस इतने में नींद खुल गई, वरदान न मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती? मांगता जो जी में आता, तुम्हें क्यों बता दूं? नहीं बताओ, शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन को तुम बहुत बड़ी चीज समझती हो, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूँ निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊँ तो बिना काफी रुपए लिए न मानूँ। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, न रॉकफेलर और कार्नेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि जरूरत की मामूली चीजों के लिए तरसना न पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ न मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस सेठ तालुकेदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं, बल्कि कितनों ही का तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता, तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने? जालपा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, क्यों चढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें जरूरत हो आज इन्हें उठा ले जाओ, मैं खुशी से दे दूंगी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जालपा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उनका मन कभी मुझसे न फिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री न मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा न रोया हो। साल दो साल तो वह खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने कहाँ क्यों उन्हें स्त्री से और रुचि से हो जाती है। मन चंचल होने लगता है, औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती? यह कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित्र नेत्रों से देखते हुए बोली, सच बताना, तुम अभी मुझे वैसा ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना, बोलो। रमा ने जालपा के गले से चिमट कर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, सोलहों आना झूठ। रमानाथ, यह तुम्हारी जबरदस्ती है, आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा, आंखों से देखती हूँ और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है, जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता, बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात न कह सको उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वैश्या के पास जाता है। वैश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हैं, कोई उससे मन की बात कहने नहीं जाता। हमारी भी वही दशा है, बोलो है या नहीं? आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो? बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, साग कम है या ज्यादा, चावल में कनी है या पक गए हैं, इस तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती। बेगार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो। मैं यह सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना न चाहिए, मैं विलासिनी हूँ। इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब, मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया। क्या करूँ? मैं समझती हूँ जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं तुम्हारे केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूँ, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात न की थी, वह इतनी विचारशील उसने अनुमान ही न किया था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था, उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा ही न की। शायद वह समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वह रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वह उससे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी। वह समझता था जालपा उसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला था, पर हाय रे संकोच, इसने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रहा वह अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना न होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान है। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आ आकर उसे जगा रही थी। वह चटपट उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था, अब उनसे कथा कहानी कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगे। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नेत्रों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वह बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे में करेला लिए वह द्वार की ओर ताकती रही। यह बात क्या है? उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ न कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया, पुकार कर पूछूं क्या बात है। उठकर द्वार तक आई भी पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था। आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है, क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधे घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यह लिचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सफाई तो करते रहो। क्या हुआ, रुपए का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो, अपने बाप से कहते हुए तुम्हें क्यों शर्म आती है? यही ना होगा तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो, ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं। इसमें डरने की क्या बात है, नहीं कहो मैं चलकर कह दूं। रमानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक कभी कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो, अगर वह रुपए न देंगे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वह यहाँ से उठा, पर उसे कुछ सुझाई न देता था। चौबैया में अवकाश से गिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट जाता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाऊं। मुंह से तो वह कुछ नहीं कह सकता था, पर कलम से लिखने में से कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा, इससे सरल और क्या हो सकता है। वह भागा हुआ घर गया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ, किस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध न हो गया तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार ले लूँ, किंतु कहीं न मिल सके। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरों रख कर काम चला लूँ। ज्यों ही रुपये हाथ आ जाएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी न आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा। अभी यह पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ कर बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूँ कि कहीं आज भी तुम यों ही खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाए। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता? रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उसे कहते शर्म आती है। रमेश, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है। अगर अपने लोगों में यह संकोच न होता तो आज हमारी यह दशा क्यों होती? रमेश, बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई बुलावा आया था। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी, हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे, गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए कानों में झुमक पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक न धोया, दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी मुझे मायके जाना पड़े तो मैं जाऊं या न जाऊं, मेरा जी तो वहां बिल्कुल न लगे। रमानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा, सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधे पर रख लेता है और वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो मुझे नजर न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदयहीन व्याध है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा? वह कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा? रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं है। वह जालपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नजर तो न लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गई। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो फोड़े पर नस्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फूटने, नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा मानो यह सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके कर पास मानो रेशम के सहस्त्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे। मानो कोई मरणासन्न कृपण अपने कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण न निकल जाएंगे? सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए तो दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपए? रुपए तो इस वक्त नहीं है। जालपा, हैं हैं, मुझसे बहाना कर रहे हो, बस मुझे 2 रुपए दे दो, और ज्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसे के साथ वह पत्र भी निकाल दिया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा के हाथ से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जालपा, किसका खत है बता दो। जालपा ने तह किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है, झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा। रमानाथ, दे दो, क्यों परेशान करती हो? रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा पर जालपा ने हाथ पीछे फेर कर कहा, मैं बिना पढ़े न दूंगी। कह दिया, ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ, अच्छा फाड़ डालो। जालपा, तब तो जरूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला आता है। वह धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुंह छिपा ले, कहाँ छिप जाए कि उसे कोई देख न सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आह, सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों चेष्टा की, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयां नहीं झेली, उन सबों ने आज मानो उसके मुंह पर कालिख पोत दी। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जालपा की सिसकियां, पिता की झिड़कियां, पड़ोसियों की कनफुसकियां सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा। जब कोई संसार में न रहेगा तो उसे इसकी क्या परवाह होगी, कोई उसे क्या कह रहा है। हाय, केवल 300 रुपयों के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है। प्रिय जनों की नजरों से गिरकर जिए तो क्या जिए। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गपोड़िया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुंह से दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह है जहां वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहां वह संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहां वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता न पा सके। गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह और कहां थी? अगर जीवित रहा तो 1-2 महीने में अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी? वह हथकड़ियां और बेड़ियां पहने अदालत में खड़ा होगा, सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा, सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे। जालपा भी जाएगी, रतन भी जाएगी, उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराए, सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, अपनी मिट्टी यों न खराब करेगा, न करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिप कर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो, शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी, कहीं कोई इधर भी न आता हो। कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी किधर। सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी, उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए न थे उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कूलियों के जमादारों को बुलाकर कहा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो, 1 रुपया तुम्हें दूंगा, मुझे गाड़ी में जाना है। रुपये लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं गिर गए, फिर लौट कर जाने में गाड़ी न मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी लिए और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा, आंखें उसकी ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं, अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा, एक कुली से पूछा। उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जबान दांतों से काट ली, नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा, समझ गया जमादार ने चरका दिया, बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है, अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया, हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं, फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे। यह दिन तो गए, हमेशा के लिए गए, इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए वह एक दिन मर जाएगा, कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी न होगा, घर वाले भी रो धोकर चुप हो रहेंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई, उसने शुरू से ही जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिख लगाकर क्यों भागना पड़ता, मगर कहता कैसे, वह अपने को अभागिनी न समझने लगती। कुछ न सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा, उसकी लालसाओं की हत्या तो न होने दी, रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था। अभी गाड़ी को चले 10 मिनट भी न बीते होंगे कि गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा, इतने आदमियों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक 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 करने लगा। ज्यों ज्यों टिकट बाबू उसके समीप आता था, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी, आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया, उसे टिकट लाने के लिए रुपए दिए थे, न जाने किधर निकल गया। टिकट बाबू को यकीन न आया, बोला, मैं यह कुछ नहीं जानता, आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा, आप कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ, सफर तो बड़ी दूरी का है, कलकत्ते तक जाना है। टिकट बाबू, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ, यही तो मुश्किल है, मेरे पास 25 का नोट था, खिड़की पर बड़ी भीड़ थी, मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं, शायद आप उसे पहचानते हों, लंबा लंबा चेचक रू आदमी है। टिकट बाबू, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के जा नहीं सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छिपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं हैं, आप जैसा मुनासिब समझें करें। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूँ। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे, तीसरा दर्जा था, अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे जो मजूरी की टोह में पूरब जा रहे थे, वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे, शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्के देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में कभी इतनी झेप न हुई थी, चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था, अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है, न जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया, गाड़ी से कूद पड़ूं, इस छिछालेदार से तो मर जाना ही अच्छा। उसकी आंखें भर आई, उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, पूछा, कलकत्ते में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा, यह गंवार मुझे बना रहा है, झुंझला कर बोला, तुमसे मतलब, मैं कहीं जाऊंगा। बूढ़े ने इस उपेक्षा पर भी कुछ ध्यान न दिया, बोला, मैं भी वहीं चलूंगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहां दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा, कोई 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था, मांस तो क्या हड्डियां तक गल गई थी, मूछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे, एक छोटी सी बकुची के सिवा उसके पास और कोई असबाब भी न था। रमा को अपनी ओर ताकते देख कर वह फिर बोला, आप हाबड़े ही उतरेंगे या और कहीं जाएंगे? रमा ने एहसान की भार से दबकर कहा, बाबा, आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊंगा। बूढ़ा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, जब चाहे दे देना, क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? रमानाथ, यहीं प्रयाग ही मैं रहता हूँ। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, धन्य है प्रयाग, धन्य है, मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ, सचमुच देवताओं की पुरी है, तो क्या रुपए निकालूं? रमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते ही चलते रुपया न दे सकूंगा, यह समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपये लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपये दे देते हैं, 10 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा। रमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ इतने बहुत हैं। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, यह बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उबार लें। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा के नेत्र से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटिक है। कलकत्ते में उसकी साख भाजी की दुकान है, रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ते ही में रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है, बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर आए? वहाँ तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ हैं, देवी भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे कलकत्ते ही में होंगे। देवी दी ने रुखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए, 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए, मैं बैठा हुआ हूँ। मुझी से तो सब पैदा हुए थे, अपने बोए बीज को किसान ही तो काटता है। यह कहकर वह फिर हंसा, जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखें हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊँगा, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊँगा, देखो किसकी टेक रहती है, बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊँगा। अब भी गहने पहनती है, सोने की बालियाँ और सोने की हंसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चल तीर्थ कर आवें तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूँ, यह है जिंदगानी का हाल। आज मरे कि कल मरे मगर दुकान न छोड़ेगी, न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई रहने वाला न कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है, अब भी एक न एक गहना बनवाती ही रहती है, न जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है, जहां देखो हाय गहने, हाय गहने, गहने के पीछे जाम दे दें, घर के आदमियों को भूखा मारें, घर की चीज़ें बेचें और कहां तक कहूं अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ते में कहां काम करते हो भैया? रमानाथ, अभी तो जा रहा हूं, देखूं कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी दीन, तो फिर मेरे ही घर ठहरना, 2 कोठरियाँ हैं, सामने दालान है, 1 कोठरी ऊपर है, आज बेचूं तो 10,000 मिले, 1 कोठरी तुम्हें दे दूंगा, जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भाग कर हावड़ा गया था, तब से सुख भी देखे दुख भी देखे, अब मना रहा हूँ, भगवान ले चलो। हाँ बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। यह कहकर देवी दीन फिर हंसा, वह इतना हंसोड़ इतना प्रसन्नचित था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था, इस बात पर लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती थी, किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते न देखा था। इतनी ही देर में उसे अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई, कितने ही लतीफे याद थे, मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है। रमा को भी अपने विषय में मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवी दीन, तो तुम भी घर से भाग आए हो, समझ गया घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, मेरा नसीबा जल गया। सास बहू में पटती न होगी, उनका कलह सुन सुन जी और खट्टा हो गया होगा। रमानाथ, हाँ बाबा बात तो यही है, तुम कैसे जान गए? देवी दीन हंसकर बोला, यह बड़ा भारी मंत्र है भैया, इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है, अभी लड़के वाले तो नहीं है ना? रमानाथ, नहीं अभी तो नहीं है। देवी दीन, छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा ठीक कहते हो, तुमने कैसे जाना? देवी दीन फिर ठट्ठा मारकर बोला, यह सब मंत्रों का खेल है, ससुराल धनी होगी क्यों? रमानाथ, हाँ दादा है तो। देवी दीन, मगर हिम्मत न होगी? रमानाथ, बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत है, जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवी दीन, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है, बेटे के लिए कहो चोरी करें भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद न आई थी, दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई, गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी दीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से 1 दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ। रमा लेट रहा। देवी दिन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा हो।